आप सबको नमस्ते। आज बड़ा शुभ दिन है कि हम बड़े दिनों के बाद, ऑलमोस्ट 13 महीने के बाद, हम ऐसे फिजिकली दोबारा इस सारे समाज में मिल रहे हैं। तो आप सब मिस कर रहे होंगे इतने दिनों से इस चीज को। जो लोग जूम में जुड़े हुए हैं, आप सबको भी नमस्ते। आज हम आर्य समाज का स्थापना दिवस मना रहे हैं और इसी के साथ जो भारत का नववर्ष है, न्यू ईयर है, वो भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। 13 अप्रैल को भारतीय नववर्ष है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन। अलग अलग राज्यों में, अच्छा बाय द वे, ये सिर्फ इंडियन न्यू ईयर नहीं है, विश्व के, ये पूरे प्लानेट का मोस्ट ऑफ कंट्रीज में यही दिन न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट होता है। जब से ग्रेगोरियन कैलेंडर इम्पोज किया गया और यूरोपियन कॉलोनीज पूरे देश में बने, जिसके कारण सारी दुनिया में जैसे अंग्रेजी फैली, अंग्रेजी कल्चर फैला, इसी तरह ये ग्रेगोरियन कैलेंडर भी पॉपुलर होता गया। पर आज भी दुनिया में सभी देशों की जो अपनी न्यू ईयर है वो सेलिब्रेट करते हैं, सिवाय इंडियन लोगों के। और ये अच्छी बात है कि बहुत सालों से इंडियन लोगों के अंदर भी अवेयरनेस आ रहा है कि हम अपने न्यू ईयर्स को जानें, सेलिब्रेट करें। और ये जो इंडियन न्यू ईयर है, ये सिर्फ इंडियन नहीं, इस धरती में कम से कम 50 से 60 देश उसी दिन नया ईयर सेलिब्रेट करते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आर्य समाज का स्थापना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के, प्रतिपदा तो नहीं, पंचमी के दिन, मीन्स प्रतिपदा कहते हैं फर्स्ट डे, उसके 4 दिन के बाद 5वें दिन आर्य समाज की स्थापना हुई। महर्षि दयानंद जी ने बॉम्बे में स्थापना की, जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी के साथ आर्य समाज ह्यूस्टन, जो जुलाई में, जुलाई मंथ में एस्टेब्लिश हुआ था, उसको भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम तीनों चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। पहली चीज हम नए वर्ष से ही शुरू करते हैं, फिर आर्य समाज स्थापना दिवस पर आएंगे। ये नए साल हम क्यों शुरू करते हैं चैत्र प्रतिपदा से? इसे विक्रमी संवत भी कहते हैं। 2078 शुरू होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। महाराज विक्रमादित्य, जो उज्जैनी में जिनकी राजधानी थी, जो भारत के जो स्वर्णिम युग में वो राजा थे, जिनके राजत्व में भारत का जो स्वर्णिम युग माना जाता है, इसी तरह शालिवाहन शक संवत, जो दक्षिण में महाराष्ट्र आसपास में उनकी राजधानी थी, वो 1943 शक संवत के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये युगाब्द है, इस कलियुग को शुरू हुए 5123 साल शुरू हुआ, और इस युगाब्द, युग आदि, आदि मतलब बिगिनिंग ऑफ द युग, तो आज भी जो नए साल की शुरुआत होती है कर्नाटक और आंध्रा में, इसका नाम उगाड़ी और युगादि है। युगादि मतलब स्टार्टिंग, स्टार्टिंग ऑफ द युग, और उसके थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप तेलुगु में उगाड़ी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, ये सृष्टि संबद्ध है, इस संसार को बने हुए 1,97,294,91,22 साल हुआ सोलर सिस्टम को बने हुए, ये भी इसी दिन से शुरू होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपद। तो विक्रमी संवत, महाराज विक्रमादित्य जो उज्जैन के राजा थे, तो उन्होंने शकों पर जब विजय लाभ किया 56 BCE में, उसके बाद उन्होंने ये संवत्सर चलाया। पहले जमाने में राजा लोग अपने, जो बड़े बड़े राजा होते थे, अपनी विजय के उपलक्ष्य में या अपने राज्य में एक कैलेंडर चलाते थे, और वही विक्रमी संवत्सर आज उसको 2078 साल हुआ, आज शुरू होगा, मतलब 13 अप्रैल से। शालिवाहन महाराज जो जो शक संबत जिन्होंने चलाया, जो सातवाहन डायनेस्टी से है, 78 AD उनका समय है, वहां से शक संबत शुरू हुआ। आज भी इंडियन गवर्नमेंट के कैलेंडर में जो तिथियां होती है वो शक संबत, विक्रमी संबत और ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चलाई जाती है। और ये जो संबत हैं, सिर्फ गुजरात को छोड़कर जहां कार्तिक मास में अमावस्या को, दीपावली को नए साल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और गुजरात का जहां जहां थोड़ा इन्फ्लुएंस हुआ, राजस्थान का कुछ एरिया, उसको छोड़ करके पूरे भारत, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मिडिल ईस्ट से लेकर के एशिया का पूरा भाग में मार्च में, मार्च अप्रैल के बीच में इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही सेलिब्रेट किया जाता है। और एक चीज है इसके साथ, क्योंकि भारत में दो कैलेंडर चलते हैं, सोलर कैलेंडर और लूनर कैलेंडर, तो जो चंद्रायन है, जो लूनर कैलेंडर है, उसके हिसाब से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, तो जो लोग सोलर सिस्टम के द्वारा न्यू ईयर चूज करते हैं वो वैशाख को सेलिब्रेट करते हैं, जैसे पंजाब है, बंगाल है, उड़ीसा है, केरला है, आसाम है, ऐसे कुछ राज्य हैं जो वैशाख का पहला दिन सोलर सिस्टम के हिसाब से वो संक्रांति को उसको सेलिब्रेट करते हैं। बाकी जो चंद्रमास के हिसाब से चलते हैं वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को न्यू ईयर के रूप में मानते हैं, तो इससे आपको 10-12 दिन का फर्क थोड़ी बहुत मिलता है। और इंटरेस्टिंगली अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, उसको थोड़ा बहुत जानेंगे। सबसे पहले ये इस यूनिवर्स का, मतलब सोलर सिस्टम का ये न्यू ईयर है, हैप्पी न्यू ईयर ऑफ सोलर सिस्टम। इसको बने हुए 1,97,49,39,49,121,22 साल करीब हुआ। डिटेल में बाद में जाएंगे, आज का समय इस पर ज्यादा स्पेंड करने का नहीं है। ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का और एक विशेषत्व है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आज के दिन ऐसी चैत्र प्रतिपदा के दिन ही अभिषेक, राज्याभिषेक हुआ था, तो ये राम संवत्सर, श्री राम वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। और कलियुग का शुरुआत 5,122 साल हुआ, युधिष्ठिर राजा को राज्याभिषेक करते हुए, तो 5,122 साल हुआ, जिसको युगादि या उगाड़ी के रूप में भी हम मनाते हैं। अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम है, महाराष्ट्र में इसको गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है, कोंकणी लोग को संवत्सर पाड़ो के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, राजस्थान में थापना, सिंधी लोग चेटीचंड, कश्मीर में नवरे या नवरोज, मणिपुर में जो मैतेई कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर, उसमें चैरोवा, और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों में इसको युगादि या उगाड़ी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तमिल जो सोलर कैलेंडर मानते हैं संक्रांति के हिसाब से, उनके हिसाब से जो राज्य सोलर सिस्टम से न्यू ईयर मानते हैं वो वैशाख मास में सेलिब्रेट करते हैं, उसमें तमिलनाडु में उसको पठंडू या बरुडा पिरप्पू, केरला में विशु, पंजाब और हरियाणा बेल्ट में वैशाखी, बिहार, नेपाल, बिहार का जो मिथिला एरिया जो नेपाल बॉर्डर लगता है उसमें जुड़े शीतल और पहिल वैशाख, बंगाल में पहला वैशाख, आसाम में रंगली बिहू या बोहाग बिहू, बोहाग मतलब वैशाख से बोहाग, उड़ीसा में विषु संक्रांति के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया के अनेक देशों में होता है। थोड़ी बहुत जो मैं 1-2 मिनट में आपको थोड़ी सी हिंट्स देने के लिए कोशिश करूंगा, इंडोनेशिया के बाली द्वीप में इसको न्यापी कहते हैं, इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा इसी के आसपास सेलिब्रेट होता है। इंडोनेशिया के जो जावानीज कल्चर है उसमें उसको सातु सुरो कहते हैं, थाईलैंड में संक्रन कहते हैं, संक्रन मतलब संक्रांति, ध्यान रखिए संक्रांति से संक्रन बना, मतलब वो चैत्र प्रतिपदा के जगह वैशाख एक को मानते हैं। इसी तरह लाओस में भी संकान बोलते हैं या पी माई लाओ बोलते हैं, कंबोडिया जो खमेर कैलेंडर है उसमें चौल छनाम थमे बोलते हैं, अगर आप मिडिल ईस्ट में जाएं और सेंट्रल एशिया में जाएं, वो उसको नवरोज नवरहे के रूप में जानते हैं, ये भी संस्कृत शब्द है, नव मतलब नव न्यू और रोज मतलब डे, रोज एक पर्शियन वर्ड है जो ओल्ड पर्शियन जो संस्कृत की जुड़वा बहन टाइप की है, तो वो नवरोज मतलब नव दिन न्यू डे। ईरानियन कैलेंडर जो ज़ोरास्ट्रियन न्यू ईयर है उसमें उसको नवरोज बोलते हैं, और इसी तरह पूरे वेस्टर्न एशिया सेंट्रल एशिया जो कॉकसस है ब्लैक सी बेसिन है या बलकान से वो सब इन्हीं के आसपास इसको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आज वो टाइम इतना नहीं है, नहीं तो इवन जो सेलिब्रेशन की जो तरीका है वो भी सेम है जो इंडिया के अलग अलग राज्यों में होता है। वो जो गेहूं की जो पहला जो घास उगता है जो प्लांट उगता है और ऑलमोस्ट जो सेलिब्रेशन की तरीका भी एक जैसे होता है थोड़ी बहुत तो फर्क होने के कारण। ये देखिए मोस्ट ऑफ सेंट्रल एशिया रशियन बेल्ट में इसके नाम जो न्यू ईयर इन्हीं दिनों सेलिब्रेट होता है, अल्बानियन लोग इसको नौरुजीत के रूप में, अजबरी जो अजबरबैजानी लोग इसको नवरोज, पोलैंड के लोग नोविली रोक, स्लोवाक नोवी रोक, कुर्दिश न्योरोज, किर्गिस्तान वाले नूरोज, पश्तो जो आपका अफगानिस्तान तजाकिस्तान के आसपास जो ट्राइब है वो नवरोज, तजाक ताजिक इसको वही नवरोज, तर्शिक इसको नवरोज, ध्यान रखिए नवरोज नव नव रोज मतलब डे, उज्बेकिस्तान में नवरोज के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। थोड़ा बहुत पिक्चर को ध्यान देखेंगे आपको सिमिलैरिटीज मिलेगी, ये जो गेहूं के घास होते हैं गेहूं के जो प्लांट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यू ईयर सेलिब्रेशन में, भारत में भी भारत के बाहर भी। डांस तो हर एक के अपने अपने कल्चर होते हैं। इसी तरह इस सेंट्रल एशियन कंट्रीज में आप जाएंगे कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान वगैरह वगैरह में, वहां भी इसको नेरीज के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और तो ये मैंने संक्षेप में थोड़ी बात रखने की इसीलिए कोशिश की कि आपको, क्योंकि इंडियन लोगों में कॉम्प्लेक्स बहुत होता है ना, वो कितना भी पढ़ा लिखा होता है अगर केवल इंडियन सेलिब्रेट करते हैं फिर हमें लगता है बेकार होगा। तो जब तक आपको पता ना चले कि आपकी चीजों को 10-20 और लोग भी करते हैं फिर आपकी थोड़ा बूस्ट होता है, अच्छा चलो फिर मेरी चीज में कुछ इंपोर्टेंस है। तो मैं अपनी चीजों को उतना इंपोर्टेंस तब तक नहीं देता हूं जब तक मुझे पता ना चले कोई बाहर वाला भी मुझे मानता है कि नहीं मानता। दैट द प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडियन कम्युनिटी, वो बाहर रहते हैं अंदर रहते हैं बहुत पढ़े लिखे हैं पैसे वाले हैं स्टिल दे हैव दैट सेम प्रॉब्लम। जब तक कोई बाहर वाला उनको थोड़ा स्टाम्प ना लगा दे भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हमें लगता है कि हम थोड़े वीक हैं। सो दैट्स हाउ मैंने कोशिश किया थोड़ा आपको बताने के लिए कि आप फील करो कि आपका न्यू ईयर सिर्फ आपका नहीं, जिसके कारण आप कोई ट्राइब बन जाए बहुत लोग आपके साथ हैं तो यू कैन सेलिब्रेट ओपनली, है ना, जैसे चाइनीज लोग भी सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अब हम आते हैं आर्य समाज के प्रसंग के ऊपर। आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद जी ने चैत्र शुक्ल पंचमी 1932 विक्रमी संवत को, उसके हिसाब से 1875 ग्रेगोरियन कैलेंडर में 1875 को 10 अप्रैल को स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना क्यों हुई ज्यादातर लोग हम जानते हैं। आर्य समाज एक पिक्युलर कोई रिलीजियस सेक्ट नहीं है, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसका अपना कोई गुरु है, अपना कोई कंसेप्ट है जिसको पॉपुलराइज करना नहीं। जो हिंदू धर्म में जो चीजें हैं, हिंदू धर्म की जो असली स्वरूप है, हिंदू धर्म जैसा होना चाहिए कैसा होना चाहिए, मेरे और आपके कहने पर नहीं या हमारे और आपके गुरु के कहने पर नहीं, जो आपके और हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं, जिस तरह के वेद उपनिषद धर्मशास्त्र दर्शन शास्त्रों में हिंदू धर्म का जो स्वरूप है उस स्वरूप को ओरिजिनल स्वरूप को रिवाइव करना, हिंदू समाज में हिंदू धर्म में और भारतीय समाज में धर्म के नाम पर जो ब्लाइंडनेस जो विकृतियां जो प्रॉब्लम सोशल एविल्स हो रिलीजियस एविल्स हो आए हैं उसको ठीक करके लोगों को वापस अपने ओरिजिनल धर्म के प्रति जागरूकता पैदा करना और धर्म को जीवन का धर्म हमारे लाइफ का एक पार्ट है ये फील कराना, न कि मंदिर में या घर के छोटे से कमरे में जहां मूर्ति रखी है वही पूजा पाठ ही धर्म है, या किसी नदी में डुबकी लगाने से या ब्राह्मण को दान देने से ही धर्म है। इससे ऊपर उठ के जो शास्त्रों में धर्म की डेफिनेशन बताया कि तुम्हारा खुद का व्यवहार, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा बिहेवियर, वो बिहेवियर फिजिकल हो, मेंटल हो या ओरल हो, यही धर्म है। उसमें पूजा भी पाठ है, मंदिर जाना भी वो एक कंपोनेंट है, पूरा सारा नहीं है। तुम अगर केवल पूजा करते हो, बाकी तुम्हारे चरित्र में कोई अच्छी चीजें नहीं है, तो वो 1% होगा, 99 तो तुम करप्ट हो गए। तो तुम 99 करप्शन को बढ़ावा देते और 1% करते हो तो वो कोई धर्म नहीं होता है। तो जब तक लोगों के अंदर ये अवेयरनेस नहीं आएगा तो लोग धर्म के नाम पर सारे पाप भी करते रहेंगे और अपने आप को रिलीजियस भी मानते रहेंगे। और रिलीजियस क्यों मानेंगे, क्योंकि मैं कोई पूजा पाठ करता हूं, मैं किसी गुरु को मानता हूं, मैं माला चढ़ाता हूं, जपता हूं, चंदन तिलक लगाता हूं, तो मैं धार्मिक हूं। इस गलत फहमी को दूर करना भी आर्य समाज का काम था, जिसके कारण इसकी स्थापना हुई। उद्देश्य था कृणवंतो विश्वमार्यम, सारे संसार को आर्यमल श्रेष्ठ बनाना है, अच्छा बनाना है, बेटर बनाना है। आर्य शब्द का अर्थ भी यही है। आजकल तो हमें पढ़ाया जाता है आर्य बाहर से आए, पर किसी भी भारतीय लिटरेचर में आपको ये नहीं मिलेगा कि आर्य बाहर से आए या अंदर से आए। आर्य एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है। एडजेक्टिव समझते हैं, जैसे आप किसी को कहते हैं बड़ा अच्छा आदमी हो, बुरा आदमी हो, लंबा हो, छोटा हो, ये मास्टर है, टीचर है, प्रोफेसर है, ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स। तो आर्य एक एडजेक्टिव के रूप में हमारे यहाँ लिटरेचर में यूज होता था। मान लीजिए आप किसी को कहना चाहते हैं आप बड़े अच्छे आदमी है, तो प्राचीन काल में कहा था ये आर्य है, और जो बुरा आदमी है उसको अनार्य कहते थे। जिसको आजकल आप कहते हैं बड़ा गंदा आदमी है, बुरा आदमी, जिसको हम रेस्पेक्ट देते थे उसको आर्य कहते थे। प्रजा राजा को आर्य कहते थे, पत्नी पति को आर्य कहती थी, पति पत्नी को आर्या कहती थी। अगर आपको विश्वास नहीं है, संस्कृत में कोई भी लिटरेचर उठाओ, इवन जो काव्य है, जो कविताएं हैं, पुराने काव्य कविताएं कालिदास के, भास के, उसमें आप देखेंगे, इवन रामायण महाभारत अगर आप पढ़ते हैं, जहां थोड़ा डायलॉग स्टाइल में हिस्टोरिकल बातें हैं, तो उसमें देखेंगे पत्नी पति को आर्य बोलती है, पति पत्नी को आर्य, आर्य मतलब संस्कृत में जब एड्रेस करते हैं आ ए हो जाता है, मतलब लता को लते, सीता को सीते, तो आर्य को आर्य, आर्य बोलते थे। तो आर्य एक एडजेक्टिव है, तो उसका अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का बड़ा इंटरेस्टिंग मीनिंग है। आर्य शब्द का अर्थ होता है जिसमें मूवमेंट हो, जो प्रोग्रेस करता हो। मतलब अगर इसको सिंपल भाषा में आपको बताएं, आर्य मीन्स प्रोग्रेसिव, जो बढ़ता जाता है, जो ठहरा हुआ पानी नहीं है, बहती हुई नदी है। और जिसके जीवन में जो बचपन में जैसा था 25 साल के बाद अगर वैसा ही है तो ठहरा हुआ आदमी है, इग्नोरेंट है, मूर्ख है, स्टूपिड है। जब आपके लाइफ में चेंजेस आता है, नई नई चीजें आप सीखते हैं, अपने आप को अपडेट करते हैं, आप अपने आप को सुधारते हैं, बेटर बनाते हैं, उसी को आर्य कहते हैं, उसी को ही तो श्रेष्ठ हम बोलते हैं। और ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, पूरा वेद शास्त्रों में भरा पड़ा है। चरैवेति, चलते रहो, चलते रहो। ईशोपनिषद में कहते हैं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे छतम समा, काम करते हुए 100 साल की जीने की आशा रखो। मतलब यू हैव टू डू समथिंग, आप प्रोग्रेस करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, आगे बढ़ता रहना पड़ेगा। और जो लाइफ में प्रोग्रेस करता है उसी को आर्य कहते हैं, सिंपल भाषा में कहें उसी को नोबल पर्सन कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं, अच्छा कहते हैं। ऐसे सारा संसार को आर्य बनाने का अर्थ हिंदू बनाना नहीं, आर्य बनाने का मतलब श्रेष्ठ बनाने के उद्देश्य से आर्य समाज की स्थापना हुई। और जिसका मूल होगा वेदादि शास्त्र। और आर्य समाज इस दृष्टि से बनाई गई, वो रिलीजियस सोच के कारण हो या सोशल लेवल के कारण हो, जो डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में होने लगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, है ना, ये पुरुष है, ये स्त्री है, स्त्री सेकेंडरी है, पुरुष बड़ा है, ये शूद्र है, ये छोटा है, ये ब्राह्मण ये बड़ा है, वैश्य ये है, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्वल सिचुएशन है, उसके खिलाफ मूवमेंट चलाने के लिए कि समाज में सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए, बराबर का अधिकार से ज्यादा बराबर का सम्मान होना चाहिए। और समाज में जिस तरह की सुपरस्टिशियन से अंधविश्वास है, अनजस्ट है बिकॉज ऑफ रिलीजियस बिलीव और सम सोशल परसेप्शन, जो करप्ट प्रैक्टिसेस है, वो करप्ट प्रैक्टिसेस इसीलिए नहीं कि कोई जानबूझ के करता है, इसी तरह की सोसाइटी में एक परसेप्शन बनाया गया जिससे कि व्यक्ति करप्ट भी हो रहा है और अपने आप को रिलीजियस भी समझ रहा है। मतलब आप पशुओं को मार रहे हो, इंस्टेड ऑफ फीलिंग गिल्टी आपको लगता है आप धार्मिक हो क्योंकि आप पशुओं की बलि चढ़ा रहे हो। बात समझ में आती है? तो ये जो करप्शन को जब हमने एक तरह के और बुरी चीजों को हमने एक लीगलाइज या धार्मिक फॉर्म चढ़ाया जिसके कारण हम बुरी चीजें भी करते रहे और अननोइंगली हमें ये फील होता रहे कि मैं अच्छा आदमी हूं, उसके खिलाफ वो मूवमेंट चलाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है हिंदुओं के अंदर जो कॉन्फिडेंस जिसकी बात अभी कर रहे थे, न्यू ईयर क्यों नहीं सेलिब्रेट करते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीजें जो इंडियन लोगों को वो अपनी चीजों को ना बताना चाहते हैं ना करना चाहते हैं। बहुत कम आपको एजुकेटेड हिंदू मिलेंगे जो थोड़े आराम से नॉर्मली बात कर ले कि मैं एक हिंदू हूं। मतलब उनके जीभ में कहीं ना कहीं दर्द होगा, अगर बोलना भी पड़ जाए ना मैं हिंदू हूं तो दो चार और कुछ साइड वर्ड वो जोड़ेंगे, मैं हिंदू तो हूं पर मुझे सब धर्म पसंद है, आई लाइक। मतलब ही हैज टू जस्टिफाई, कुछ ना कुछ उसको एक्सक्यूज देना पड़ेगा हिंदू बोलते समय। इतना अंदर से कॉम्प्लेक्स भरा पड़ा होता है, क्यों है उसके रीजन बहुत है। उस कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए, वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए, उस सेल्फ एस्टीम की ब्लूश को रीएस्टैब्लिश करने के लिए आर्य समाज की स्थापना हुई थी। और आर्य समाज की जो बेसिक जो बिलीफ सिस्टम, जो आर्य समाज तीन चार चीजों को बेसिकली मानता है और लोगों को ये एक्सपेक्ट करता है कि लोग इन चीजों को माने, अपने लाइफ में इन तीन चार चीजों को अपना पैरामीटर बनाए, वो है पहली चीज, दुनिया में किसी भी चीज को आपको मानना हो ये चार चीजों के बेसिस पर जरूर मानो। कोई भी बोले, तुम्हारा कितना बड़ा गुरु भगवान बन जाए मार बोले, उसको अगर आपको एग्जामिन करना है ये सच या गलत है, ये चार पैरामीटर आर्य समाज प्रिस्क्राइब करता है बेस्ड ऑन वैदिक लिटरेचर। पहला, जो ईश्वर के इटर्नल लॉ रूल्स हैं। आप कहेंगे ईश्वर के कौन से इटर्नल लॉ है? जो नेचर का लॉ है, जो भी नेचुरल है, जो भी लॉ ऑफ नेचर है वो सही है। कोई भी आपको कुछ भी बोले, इफ इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, वो ब्लाइंड बिलीव है, वो गलत है। इसी तरह जो वैदिक शास्त्रों में बताया गया है उनको आप बिलीव करें, जो बाकी जगह बताया गया आप इनको एग्जामिन करें। नंबर तीन, जो लॉजिकल है, जो रैशनल है उसको आप बिलीव करें, कोई भी बताए, इफ इट इज इरैशनल इलॉजिकल डोंट एक्सेप्ट इट। एंड फोर्थ वन, अगर आपको किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं, आप लॉ ऑफ नेचर नहीं समझते, वैदिक शास्त्रों को नहीं जानते, आप लॉजिकली या रैशनली सोच नहीं पाते, पर इतना तो ईश्वर ने सब मनुष्यों को दिया है कॉमन सेंस। कुछ भी हम करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, अंदर से एक आवाज आती है, फर्स्ट साउंड, वो वॉयस आता है आपको अंदर से सुनाई देता है कि सही है या गलत है। आपका कॉमन सेंस ये ईश्वर की तरह दिया हुआ है, है ना? तो उसको मनुस्मृति कहता है, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः। ये जो तुम्हारा प्रिय, जो जैसे ही तुमने कुछ करने की कोशिश की तुम्हारे अंदर से एक फीलिंग होती है ये अच्छा या बुरा है। जब भी झूठ बोलते हो अंदर से तुम्हें कहीं ना कहीं लगता है ये गलत है, जब भी सच बोलते हो अंदर से तुम्हें अच्छी फीलिंग होती है, जब भी किसी की हेल्प करते हो तुम अच्छा फील करते हो, जिसको भी तुम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हो, नीचा दिखाते हो, पब्लिक में तो दिखा दिया और बाहर ईगो को सेटिस्फाई करके आ गया, पर अंदर से तुम्हें उस दिन अच्छा फीलिंग नहीं होता है, ऑल दीज आर सिम्टम्स ऑफ कॉमन सेंस की अच्छा है कि सही है। तो कोई भी व्यक्ति कितने भी बड़ा आदमी बोले, अगर चींटी काटने से तुम्हें दर्द होता है, इट्स अ कॉमन सेंस टू एक्सेप्ट कि चींटी काटने से दर्द होता है। अगर किसी भी शास्त्र में लिखा हो चींटी काटने से दर्द नहीं होता है, कितना भी बड़ा आदमी बोले चींटी काटने से दर्द नहीं होता है, डोंट बिलीव इट, डोंट एक्सेप्ट इट, दैट इज द कॉमन सेंस। यही आर्य समाज बताना चाहता है, कॉमन सेंस को कम से कम यूज करें, कोई भी शास्त्र को कोट करने से पहले कॉमन सेंस में उसको स्क्रूटिनाइज करे, तभी जाकर के हम रियल धर्म रियल ईश्वर भक्ति को कर पाएंगे। आर्य समाज जो चीजों को रिजेक्ट करता है उनमें से बेसिकली चार पांच चीजें। पहली चीज है कि जो गुरु कल्ट है, गुरु कल्ट मतलब गुरुओं को रिस्पेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरुओं को भगवान की तरह ट्रीट करना या भगवान मानना या किसी भी ह्यूमन बींग को अवतार मानना या किसी भी ह्यूमन बींग को ईश्वर के नीचे ऊपर साइड जॉइंट कुछ भी मानना, ये पाप है। ईश्वर के प्रति पाप करना होता है। मनुष्य को मनुष्य मानो। अगर किसी ने तुम्हारे ऊपर कुछ उपकार किया है, गुरु के रूप में हो या किसी रूप में, उसको रिस्पेक्ट करो, पर इतना नहीं कि तुम अपनी सारी कुर्बानी कर लो उसके लिए। हेरिडेटरी कास्ट सिस्टम जाति प्रथा के खिलाफ आर्य समाज है। अनटचेबिलिटी जो आजकल बहुत कम हो गया है, ये हमारे लिए सौभाग्य है। और किसी भी फॉर्म का जो हिपोक्रेसी, जो आप मन से मानते हो गलत है ऊपर से करना करते हो, या अंदर से मानते हो सही है पर ऊपर कर नहीं पाते हो क्योंकि सोशल कल्चरल रिलीजियस प्रेशर है, वो हिपोक्रेसी के खिलाफ है। तो ये बेसिकली कुछ चार पांच चीजें हैं जो आर्य समाज की बेसिक चीजें हमें समझने की जरूरत है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो इंडियन सोसाइटी में उसके अवेयरनेस की जरूरत है, वो है भाग्यवाद और कर्मवाद। ज्यादातर इंडियन किसी भी कारण से या तो हमारे धर्मगुरुओं ने ऐसी दिमाग में डाल डाल के हमें बना दिया, हम भाग्यवादी हो चुके हैं, एफर्ट्स कम करते हैं, भगवान पर ज्यादा भरोसा रखते हैं, हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाने पर ज्यादा भरोसा रखते हैं, साईं मंदिर में मुकुट चढ़ाने पर ज्यादा भरोसा रखते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ की अपने ऊपर, अपने एफर्ट्स के ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर। ये जो भाग्यवाद है, इसीलिए हिंदुस्तान जो पिछले 1-2 हजार से जो सोने की चिड़िया, गरीबी, भुखमरी, इग्नोरेंट लोगों के देश बना, उसका कारण है कि हम अपने कर्मों पर कम भरोसा करते हैं, दूसरे की कृपा दया आशीर्वाद पर, बात बात पर उसकी आशीर्वाद से, तुम्हारी आशीर्वाद से, तुम्हारी कृपा से। स्टूपिडिटी है, हिपोक्रेसी है, बिलीव इन योर सेल्फ। तुम अगर मेहनत नहीं करते हो, तुम्हारे माँ बाप के आशीर्वाद से भी तू किस कुछ नहीं बन सकता। अगर ऐसा होता है तो फिर सारे गरीब बच्चे धनी बन जाते, माँ बाप तो उनको भी आशीर्वाद करते हैं। सब अनपढ़ बच्चे पढ़े लिखे होते, माँ बाप उनको भी आशीर्वाद करते हैं। इस तरह के गलत परसेप्शन से हम ऐसे एक झुंड पैदा करते हैं जो अपने मेहनत को कम, दूसरों के आशीर्वाद कृपा दया पर ज्यादा भरोसा करते हैं। फिर निर्मल बाबा जैसे बाबा पर घर घर पैदा हो जाते हैं, फिर आप चंदा चढ़ाते हैं, है ना। कर्म पर भरोसा करना, अपनी मेहनत पर और कर्म फल। तुम जो कुछ करते हो उसका फल तुम्हें मिलेगा, आज मिलेगा नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो परसों मिलेगा, तुम्हें मिलेगा। ये बहुत जरूरी है और ये हर आदमी तक, हर महिला तक ये विचार पहुंचना चाहिए। तुम्हारे कर्मों से तुम आगे बढ़ोगे या पीछे जाओगे, और तुम्हारा कर्म का फल तुम्हें ही मिलेगा। जब तक हम लोगों के अंदर कर्म सिद्धांत का सही मायने नहीं पहुंचाएंगे, लोग इस तरह के फरेब में नोइंगली अननोइंगली जीने की मजबूर होंगे। तो ये आर्य समाज की कुछ बेसिक उद्देश्य के कारण के साथ आर्य समाज की स्थापना हुई। और अब हम आते हैं अपने लोकल ईस्टर्न आर्य समाज जिसकी स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। आर्य समाज ग्रेटर ह्यूस्टन, जहां आज आप बैठे हुए हैं, इतने सुंदर फैसिलिटी, इतने एक्टिविटीज, इतने सारे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, हम सब मिले हुए हैं। 1991 में आर्य समाज ह्यूस्टन में आर्य समाज का मूवमेंट शुरू हुआ और श्री रामचंद्र महाजन जी, देव जी यहां बैठे हैं, उनके पिताजी, जिन्होंने ह्यूस्टन में इस मूवमेंट को अपने बुढ़ापा के एज में भी जवानों के तरह शुरू किया, बीज डाला, लोगों को जुड़ने शुरू किया, आर्य समाज के बीज लोगों के अंदर डालना शुरू किया। धीरे धीरे अब छोटे से वो सुनील जी, रीता मेहता जी के छोटे से शोरूम में या कहीं आर्य समाज की शुरुआत होती है, कुछ लोग आते हैं, वहीं से शुरू होती है, थोड़े से लोगों से। और आज हम इतना सुंदर और इतना बड़े परिवार के साथ और इतने सारे एक्टिविटीज के साथ, ह्यूस्टन का वन ऑफ द जितने भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है रिलीजियस और सोशल, उनमें भी वन ऑफ द प्रोमिनेंट पिलर के रूप में आर्य समाज आज है। सिर्फ आर्य समाज की एक्टिविटीज के लिए नहीं, इवन कम्युनिटी सर्विस के लिए भी, इवन अमेरिकन सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन के दृष्टि से भी वन ऑफ द प्रोमिनेंट पिलर के रूप में जो आर्य समाज आज हुआ, तो वो हमारे इस आर्य समाज के फाउंडर रामचंद्र महाजन जी की प्रयास से, उसके बाद देव जी और उनके साथ जो पूरी ग्रुप है, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, हो सकता है आगे संजय सूद जी डिटेल में बताएंगे, उसके साथ शुरू होता है और आज हम यहाँ पहुंचे। आशा करता हूं आर्य समाज ह्यूस्टन इसी तरह अपनी सोशल एक्टिविटी जिसके साथ आर्य समाज का जो मूल उद्देश्य उसके ना भटके, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और सभी अधिकारियों से प्रार्थना है। सब कुछ करें पर आर्य समाज की मूल उद्देश्य को हमेशा आगे रखें। इसी भाव के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस कोरोना समय में भी हम सब आज 13 महीने के बाद इकट्ठा हुए, इसी बहाने हम अपना न्यू ईयर भी सेलिब्रेट किया, आर्य समाज की स्थापना दिवस भी, और अपना आर्य समाज ह्यूस्टन जो हम सबका बहुत लोगों के लिए ये दूसरा घर है, बहुत सारे लोग बोलते हैं दिस इज माई सेकेंड होम, है ना, तो उन सब के लिए हमने सेलिब्रेट करने का मौका मिला। संजय जैन जी और उनके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, तो उन्होंने ये सुंदर आयोजन किया। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति। और संजय जी अनाउंसमेंट करेंगे।